आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये है लाइव हिंदुस्तान प्रोडक्शन।
नमस्कार, ये रही आज की सबसे बड़ी खबरें।
कोरोना से जंग में कमजोर पड़ा भारत का अटैक, 40 दिन में 50% घट गया टीकाकरण, ये आंकड़े दे रहे टेंशन। पिछले 40 दिन के भीतर देश में करीब 50% की गिरावट दर्ज की गई है। इस समय देश जब कोरोना संक्रमण के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है तो टीकाकरण में गिरावट आने को विशेषज्ञ बेहद गंभीर और चिंताजनक मानते हैं। पिछले माह अप्रैल में टीकाकरण में खासा तेजी दर्ज की गई थी, पर अब मई आते ही रोजाना लगने वाली खुराकों की संख्या आधी रह गई है। इन 40 दिनों के भीतर टीकाकरण में 50.88% की गिरावट दर्ज की गई है। पिछले माह अप्रैल में भारत में औसतन प्रतिदिन 30,24,362 खुराकें लगाई जा रही थीं, जबकि मई में यह संख्या प्रतिदिन औसतन 16,22,087 डोज ही रह गई। ब्लैक फंगस के बाद आया व्हाइट फंगस कितना है खतरनाक, जानिए क्या बोले डॉक्टर। ऐसे समय में जब कोरोना के बाद देश के कई राज्यों में ब्लैक फंगस के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है, एक और बीमारी है जो देश में अपने पैर पसारते हुए दिख रही है। यह बीमारी मुख्य रूप से इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड COVID-19 रोगियों को प्रभावित कर रही है। यह एक अलग फंगस है जिसे व्हाइट फंगस कहा जाता है। इसने पूरे देश में एक बार फिर हलचल मचा दी है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि यह ब्लैक अंग फंगस के जितना खतरनाक नहीं है। सही समय पर इसे पहचान कर डॉक्टर के पास चले जाएं, इसको लिए शीघ्र इलाज जरूरी है जो 1 से 1.5 महीने चल सकता है। LNJP में काम करने वाले डॉक्टर सुरेश कुमार कहते हैं, व्हाइट फंगस, एस्परगिलोसिस, ब्लैक फंगस जितना खतरनाक नहीं है। इसका इलाज 1.5 महीने तक जारी रह सकता है, इसलिए शीघ्र निदान महत्वपूर्ण है। अपने डॉक्टर की सलाह के बिना कोविड के इलाज के लिए स्टेरॉइड न लें। ताउते के बाद आ रहा एक और चक्रवाती तूफान यास, इस बार बंगाल और ओडिशा होंगे प्रभावित। उत्तर अंडमान सागर और बंगाल की पूर्वी मध्य खाड़ी में 22 मई को कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है जो चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। यह जानकारी यहां बुधवार को मौसम विज्ञान विभाग ने दी। देश के पूर्वी तटीय क्षेत्र में 26-27 मई के आसपास चक्रवाती तूफान यास दस्तक दे सकता है और इससे निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने पश्चिम बंगाल तथा ओडिशा में अपने दलों की तैनाती शुरू कर दी है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। NDRF के महानिदेशक SN प्रधान ने ट्वीट किया कि पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय जिलों में यास तूफान और इसके संभावित प्रभावों के मद्देनजर दलों को हवाई मार्ग से बुलाने का फैसला किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि आने वाले तूफान के लिए NDRF के कितने दलों को चिन्हित किया जाएगा, इस बारे में फैसला भारत मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त जानकारी के आधार पर होगा। लॉकडाउन में 8,00,000 मजदूरों ने दिल्ली से किया पलायन, परिवहन विभाग ने कराया सर्वे। कोरोना संक्रमण के चलते दिल्ली में दूसरी बार लगाए गए लॉकडाउन के चलते लगभग 8,00,000 मजदूरों ने पलायन किया है। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा बीते 4 सप्ताह में किए गए एक सर्वे में यह जानकारी सामने आई है। परिवहन विभाग की ओर से दिल्ली के प्रमुख बस अड्डों से दूसरे राज्यों की बस सेवाएं लेने वाले लोगों पर यह सर्वे किया है। दिल्ली में 3 प्रमुख बस अड्डे हैं जहां से दूसरे राज्यों के लिए बसें चलती है। इनमें कश्मीरी गेट, आनंद विहार और सरायकाले खां बस अड्डा शामिल है। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा तैयार एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 19 अप्रैल से दिल्ली में लॉकडाउन लागू होने के बाद से कम 8,00,000 प्रवासी कामगार दिल्ली छोड़ चुके हैं। किसान संगठनों ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, कृषि कानूनों पर फिर से बातचीत शुरू करने की मांग की। कृषि कानूनों के खिलाफ में किसानों का आंदोलन एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। संयुक्त किसान मोर्चा SKM ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 3 कृषि कानूनों पर बातचीत फिर से शुरू करने का आग्रह किया। किसान पिछले साल नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। किसानों और सरकार के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन वे तीन कृषि कानूनों पर गतिरोध को तोड़ने में विफल रही है। SKM में किसानों के 40 संघ शामिल हैं।
आप सुन रहे थे हिंदुस्तान का डेली न्यूज रैप, जो HT Smartcast की एक बीटा संस्करण का हिस्सा है। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे @HTSmartcast या podcasts@hindustantimes.com पर ईमेल के द्वारा सुझाव दे सकते हैं।
आप सुन रहे हैं HT Smartcast और ये था लाइव हिंदुस्तान प्रोडक्शन HT Smartcast।